देखकर इसलिए हम घूम रहे हैं कि चिड़िया आएंगी और इस बाग को खत्म कर देंगी।
जंगली जानवर आएंगे, सुअर आएंगे और बाग को खत्म कर देंगे।
आपको क्या करना पड़ेगा? खेत में खाद पानी देना पड़ेगा, लेकिन साथ ही रखवाली और गुड़ाई करना भी जरूरी है, नहीं तो बगीचा नहीं बच सकता। यह भी करना होगा। आज सब जगह जिस तरीके से दुष्टताएं चारों ओर फैलती चली जा रही हैं, उनको शिक्षा देकर के और अखंड कीर्तन करके, रामायण की कथा सुना करके आप ठीक करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं,
तो वहां चले जाइए जहां आपके खेत में जंगली सुअर आ जाते हैं।
आप वहां खड़े हो जाना और अखंड कीर्तन करना शुरू करना, रामायण पढ़ना शुरू करना और यह कहना कि सुअर भगवान जी, बाराह भगवान जी, देखना हम आपको भागवत की कथा सुनाते हैं,
तो सुनाए। आप चले जाइए, गन्ने का खेत मत खाइए।
अगर गन्ने का खेत बिना खाए सुअर वहां से चला जाए तो मैं समझता हूं कि आपके कथा कहने से सब काम चल सकता है और कथा कहने से धर्म का उद्धार हो सकता है, धर्म की सेवा हो सकती है। अगर आपको यह मालूम पड़े कि इससे काम नहीं चल सकता और हमको नया हथियार काम में लाना पड़ेगा, तब फिर आप डंडा ले करके खड़े हो जाना।
आप यह समझना कि डंडा ले करके प्रत्येक क्षेत्र में खड़े होना पड़ेगा,
अन्यथा आप जो धर्म के बीज बोना चाहते हैं, धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, वह फल फूल नहीं सकेगा।
शास्त्रार्थ भी शरार्थ भी। मित्रों,
आपको दोनों काम करने पड़ेंगे जैसे कि प्राचीन काल में ऋषियों ने किए थे।
एक ऋषि का नाम था द्रोणाचार्य। उनके पास हथियार थे।
वे दो हथियारों को लेकर लड़ने जाते थे। आपको भी मैं द्रोणाचार्य की तरीके से दो हथियारों को लेकर लड़ने के लिए कहता हूँ। वे एक हाथ में वेद लेकर के चलते थे और पीठ पर धनुष लेकर चलते थे।
अग्रतः चतुर्वेदा पृष्ठतः शिश्रो धनो शास्त्रार्थी शरार्थी। आगे वे वेदों को लेकर चलते थे, ज्ञान को लेकर चलते थे, शिक्षा को लेकर चलते थे, उपदेश को लेकर चलते थे, कथा लेकर चलते थे, अखंड कीर्तन लेकर चलते थे, अनुवादों को लेकर चलते थे।
यह भी एक बड़ा हथियार है। यह किसके लिए है? यह भले आदमियों के लिए है, शरीफों के लिए है, सज्जनों के लिए है, भावनाशीलों के लिए है, शरीफों के लिए है, सज्जनों के लिए है, भावनाशीलों के लिए है, हृदयवानों के लिए है।
जिनके पास भलमनसाहत हो, जिनके पास हृदय हो, उनके लिए यह हथियार बिल्कुल ठीक है।
आप उनको कथा कह करके, प्रेम की बातें कह करके, सज्जनता की शिक्षा दे करके, अच्छी बातें कह करके काबू में ला सकते हैं और समझा सकते हैं और सफलता पा सकते हैं।
दूसरा तरीका भी जरूरी। बेटे, मैं वेद की तारीफ करूंगा,
ज्ञान की, कथा की और भागवत की तारीफ करूंगा, लेकिन एक और चीज है जिसकी बनावट अजीब तरह की होती है। उसकी बनावट ऐसे तरीके से होती है जिनके लिए वेद एक ही है, पुराण एक ही है और कथा एक ही है और उसका नाम है जूता। जूते के अलावा उनके लिए कोई वेद नहीं है, जूते के अलावा उनके लिए कोई पुराण नहीं है, जूते के अलावा कोई शिक्षा नहीं है, जूते के अलावा कोई कथा नहीं है, उनके लिए जूते के अलावा कोई भगवान नहीं है। इस तरह के भी लोग होते हैं। उनके लिए क्या करना पड़ेगा?
उनके लिए पृष्ठतः शिश्रो धनुः, पीठ पर धनुष लेकर चलना पड़ेगा। यह हमारा ब्रह्म है और इदं क्षात्रम् है।
यह दुनिया दो चीजों से बनी हुई है, एक देव और एक दैत्य,
एक तमोगुण और एक सतोगुण। जहां सतोगुण है बेटे, हमको वहां प्यार की बातें कहना चाहिए,
क्षमा की बात कहनी चाहिए, दया की बात करनी चाहिए, करुणा की बात कहनी चाहिए, स्नेह की बात कहनी चाहिए।
और जहां सांप बिच्छू हैं, खटमल मच्छर हैं, वहां क्या करना चाहिए बेटा? वहां दूसरा तरीका अपनाना चाहिए, उभय पक्षीय दृष्टि। मित्रों, बिच्छू पर दया करेंगे तो बच्चे जिंदा नहीं रह सकते। बिच्छू को पालिए, संभालिए, सांप को दूध पिलाए और अपने बच्चों को मौत के मुंह में धकेलिए।
बेटे, इन दो में से कोई एक जिएगा,
या तो खटमल जिएगा या तो तू जिएगा।
नहीं महाराज जी,
मैं तो खटमल पालूंगा, तो बेटे पाल ले और फिर देख ले। शांतिकुंज से मैं और एक पार्सल भेज दूंगा, तू उन्हें भी पाल लेना।
नहीं साहब,
मैं तो सब पर दया करूंगा, क्षमा करूंगा। तू कर, चल तेरी दया को देखूंगा और तेरी क्षमा को देखूंगा। मित्रों,
क्या करना पड़ेगा? आपको इन बातों के बारे में कड़ा और स्पष्ट रुख ले करके चलना पड़ेगा। एकांगी धर्म से, एकांगी उपदेश से और एकांगी ज्ञान से काम चलने वाला नहीं है।
ज्ञान और विज्ञान दोनों का समन्वय लेकर चलना पड़ेगा।
हमको अपने भीतर जप का मादा पैदा करना चाहिए और ध्यान का मादा पैदा करना चाहिए और अपने भीतर जो बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, उनके प्रति लोहा लेकर खड़ा हो जाना चाहिए और अपने साथ में कड़ाई से पेश आना चाहिए। अब हम नहीं कर सकते और यह अब नहीं होगा बेटे, इस तरीके से अब बात बनने वाली नहीं है।
नहीं साहब, यह भी चलता रहेगा और वह भी चलता रहेगा। पापी चलता रहेगा और पुण्य भी चलता रहेगा और वह भी चलता रहेगा।
पाप भी चलता रहेगा और पुण्य भी चलता रहेगा और चोरी भी चलती रहेगी। बेटे, अब इस तरीके से गड़बड़ नहीं चल सकती।
अब एक के विरुद्ध लोहा ले और एक को ही बढ़ाने की कोशिश कर।
दंग नहीं दिया जाना चाहिए क्या?
मित्रों, आगे बढ़ने के लिए जीवन की नीति आपकी स्पष्ट होनी चाहिए।
अगर स्पष्ट नहीं होगी तो आप भ्रम में पड़ेंगे और ऐसे जंजाल में फंसेंगे कि आप दार्शनिक भ्रम में ही फंसे हुए रह जाएंगे।
एक महात्मा जी ने पानी में बहते हुए एक बिच्छू को निकाला और बिच्छू ने उन्हें काट खाया।
अच्छा, तो आप महात्मा हैं।
ईसा ने कहा था कि जिसने पहले कोई पाप न किया हो वही इस महिला को पत्थर मारे।
अच्छा, तो फिर कचहरी को बंद करा दीजिए, अदालत को बंद करा दीजिए, जेलखाने को बंद करा दीजिए,
मुकदमा चलाना बंद करा दीजिए,
डाकुओं की छुट्टी कर दीजिए और दुष्टों की छुट्टी कर दीजिए। आपकी मनमर्जी है, कोई भी आपको मार नहीं सकता, कोई सता नहीं सकता, कोई आपको दंड नहीं दे सकता है, क्योंकि कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने कोई न कोई बुरे काम न किए हों। इसलिए हम दंड दिलाने से आपको छुट्टी दिलाते हैं, मुक्ति दिलाते हैं। फिर चाहे हम जो काम कर सकते हैं, कोई रोकथाम नहीं है। फिर आपको दंड देने की बात कोई नहीं कहेगा, न अदालत कहेगी, न हम कहेंगे।
गुरु गोविंद सिंह जी, गांधी एवं बुद्ध। मित्रों,
मुझे गुरु गोविंद सिंह जी की नीति बहुत पसंद है, एक हाथ में माला और एक हाथ में भला।
गांधी जी, वह नीति मुझे पसंद है जिसके आधार पर उन्होंने अहिंसा की शिक्षा दी, सत्य की शिक्षा दी, खादी की शिक्षा दी। उसके साथ में उन्होंने जहां बुराइयां फैली हुई थी उसके विरुद्ध लोहा भी लिया और सत्याग्रह की मुहिम खड़ी कर दी। यह उभयपक्षीय सर्वांगपूर्णता थी। अगर यह उभयपक्षीय सर्वांगपूर्णता अध्यात्म में न आई तो फिर आपकी मिट्टी प्लीद होगी। मुझे याद है कि बुद्ध एक ऐसे तपस्वी का नाम था, एक ऐसे तेजस्वी का नाम था जिनका खून खौलने लगा था।
जब उनका जन्म हुआ तब उन्होंने देखा कि यज्ञों के नाम पर हिंसा फैल रही थी।
बुद्ध ने कहा कि भाई,
यह क्या बात है, आप लोग हवन करते हैं और जानवरों को मारकाट करके हवन करा देते हैं, यह भी कोई बात है? उस समय लोग ज्यादा पड़े हुए तो थे नहीं। उन्होंने कहा कि साहब, यह तो यज्ञ है, यज्ञ में हिंसा होती है,
यज्ञ में तो जानवर कटेंगे ही।
बुद्ध ने कहा, तो फिर यज्ञ करने की भी जरूरत नहीं है। जिसमें हत्या होती हो उस यज्ञ को क्यों करना चाहिए? पंडितों और दूसरे लोगों ने कहा कि यज्ञ करना कराना तो वेदों में लिखा हुआ है। बुद्ध ने कहा कि तो फिर ऐसे वेदों को मानने की जरूरत नहीं है जिसमें ऐसी गंदी बातें लिखी हो। फिर लोगों ने कहा कि वेद तो भगवान ने बनाए हैं। उन्होंने कहा कि तो फिर ऐसे भगवान को मानने की जरूरत नहीं है जो यह कहता है कि जीवों को, जानवरों को काट करके यज्ञ की भेंट चढ़ा दो। गैर मुनासिब बातें करने वाले भगवान से मना कर दीजिए।
अपने समय के क्रांतिकारी थे बुद्ध। मित्रों, भगवान बुद्ध ने नास्तिकवाद फैलाया, शून्यवाद फैलाया और उन्होंने कहा कि ईश्वर कोई नहीं होता।
उन्होंने वेद के विरुद्ध बहुत सारी बातें कही।
तो क्या वे वेद विरुद्ध थे? नहीं बेटे, वे वेद विरुद्ध नहीं थे। उन्होंने उस समय जो स्वरूप देखा सो मना कर दिया।
वे क्या थे?
बुद्ध ऐसे क्रांतिकारी थे, ऐसे संघर्षशील योद्धा थे कि उन्होंने जहां कहीं भी अवांछनीयता देखी हमला बोल दिया।
उन्होंने हिंदुस्तान के कोने कोने में हमला करने के लिए लाखों लोगों को भेजा।
अनीति के खिलाफ, अवांछनीयता के खिलाफ लोहा लेने के लिए भेजा।
हिंदुस्तान के अतिरिक्त बाहर एशिया के सारे देशों में और दूसरे देशों में जहां अनीति और अज्ञान फैला था वहां लाखों आदमी भेजे।
ऐसे लड़ाकू, ऐसे योद्धा और ऐसे शक्तिशाली थे बुद्ध भगवान की मैं क्या कह सकता हूँ।
उन्होंने क्षत्रिय के घर में जन्म लिया था। वे बहादुर थे, लेकिन थोड़े दिनों बाद क्या हुआ? कुछ लोगों ने, कैसे लोगों ने, जैसे हम और आप लोगों ने बुद्ध की ऐसी मिट्टी प्लीद की कि भगवान करे कोई ऐसी किसी की न करे।
अहिंसा की मिट्टी प्लीद।
लोगों ने क्या किया? उन्होंने एक छोटा वाला हिस्सा, कमजोर वाला हिस्सा ले लिया, उसे लिख लिया जिसके भीतर हम अपनी कमजोरियों को छिपा सकते हैं। कमजोरियों को छिपा सकने वाला अहिंसा वाला हिस्सा उन्होंने ले लिया और कहा कि हम हिंसा नहीं करेंगे। अगर कोई मारे तो
मारे, तो मारता रहे, हम नहीं मारेंगे।
अच्छा, तो अहिंसा को तू निभा लेगा, यह अच्छी बात है। इसमें कोई आफत तो नहीं है? इसमें कोई आफत नहीं है। कोई पीटता है तो तू पीटता रहे, नहीं तो अहिंसा खंडित हो जाएगी।
अहिंसा पाल लीजिए,
यह बड़ा सरल है। इसमें कोई आफत नहीं, इसमें कोई त्याग नहीं करना पड़ेगा और कोई कष्ट सहन नहीं करना पड़ेगा। बेटे, इसी तरह से भगवान बुद्ध की जितनी विचारधारा थी, जितना मजहब था, लोगों ने उसका सत्यानाश कर दिया और दुनिया को खत्म कर दिया। फिर क्या हुआ?
हुआ यह कि जैसे तिब्बत में आप चले जाइए वहां अहिंसा धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। सारा तिब्बत बौद्धों का देश है।
वहाँ अहिंसा पाली जाती है, लेकिन मांस सब खाते हैं और अहिंसा का पालन करते हैं। इसका क्या मतलब है?
बेटे, वे हत्या नहीं करते।
तो बिना हत्या के मांस मिल जाता है? अभी मैं बताता हूँ कि बिना हत्या के भी मांस मिल सकता है।
कैसे?
सरल रास्ता ढूंढते हैं आप। वे बकरी का मुंह बांध देते हैं, जिससे वह चिल्लाती नहीं है, तो हत्या कैसे हुई? एक काम और वे करते हैं कि उसके गले में फांसी लगाकर टांग देते हैं और उसे मार डालते हैं।
इससे उसको खून भी नहीं निकलता, तो फिर हिंसा कैसे हुई? चिल्लाएगी नहीं, खून निकला नहीं, तो ये अहिंसा हुई।
इस तरह उन्होंने अपने लिए अहिंसा का मतलब निकाल लिया। सारे के सारे तिब्बत में इसी तरह की अहिंसा फैल गई। बेटे, इस तरह की विडंबनाएं करने में हम बड़े माहिर हैं। इन मामलों में हम बड़े माहिर हैं। देखिए, हम भगवान रामचंद्र जी की भक्ति के बारे में, श्री कृष्ण जी की भक्ति के बारे में हम बड़े माहिर हैं।
हमने ऐसा तरीका ढूंढ निकाला है
कि दोनों की भक्ति एक ही ढेले से हम दोनों का शिकार खेल सकते हैं।
कैसे? हरे कृष्णा हरे कृष्णा से हार गए रामा, हार गए कृष्णा, देख लीजिए एक ही ढेले में हमने दो शिकार मार दिए। हाँ महाराज जी, कौन सा मारा? एक मारा राम और एक मारा कृष्ण। बेटे, इनमें राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुष थे। राम मर्यादाओं की स्थापना करने आए थे, तो श्री कृष्ण पूर्ण पुरुष बनाने के लिए आए थे।
आप मर्यादाओं का पालन करेंगे?
हरे रामा करूंगा। देखा, सबसे सुगम वाला रास्ता ढूंढ लिया, सबसे सरल वाला रास्ता ढूंढ लिया। कमजोर अहिंसा। मित्रों, भगवान बुद्ध के जमाने में ऐसा ही हुआ, केवल अहिंसा वाला हिस्सा रह गया, लोगों ने बाकी सब हथियार फेंक दिए। साहब,
हम अहिंसा करेंगे और जप करेंगे, अहिंसा करेंगे और जप करेंगे।
इसका परिणाम यह हुआ कि मध्य एशिया से 1500 आदमी आए और 1500 आदमी सारे हिंदुस्तान पर एक के बाद एक कब्जा करते चले गए। 80 वर्ष के अंदर सारे हिंदुस्तान को पैरों तले रौंदकर फेंक दिया, केवल 1500 डाकुओं ने।
क्यों आती है अहिंसा?
यह कौन सी वाली अहिंसा है जिसमें डाकुओं को छूट, दुष्टों को छूट, बेईमानों को छूट, अत्याचारियों को छूट, सबको छूट है?
बेटे, यह थी अहिंसा जिसने हिंदुस्तानियों को शाप दिया कि वे हजारों वर्षों तक गुलामी के बंधनों में जकड़े पड़े रहें।
आप उस अहिंसा का चमत्कार देखिए जिसने हिंदुस्तान को हजार वर्ष के लिए गुलाम बना दिया। हिंदुस्तान से वही अहिंसा दौड़ती हुई चली गई और उस अहिंसा के ऊपर 1500 डाकू बढ़ते हुए चले गए। वे सिंगापुर में चले गए, मलेशिया चले गए, जावा चले गए, सुमात्रा चले गए, इंडोनेशिया चले गए। वे सब मुस्लिम देश हैं, जहां आप जाकर के देखिए, वहां अभी भी सारे मंदिर बने हुए हैं। हिंदू सभ्यता की रामायण की रामलीलाएं होती हैं। वहां 90-95% मुसलमान हैं।
नहीं साहब,
सारे के सारे देशों में मुसलमान बड़े ताकतवर थे। नहीं बेटे, ये डाकू ताकतवर नहीं थे, मुसलमान ताकतवर नहीं थे, वरन हम कमजोर थे, हमारी अहिंसा कमजोर थी। भीतरी एवं बाहरी दो मोर्चे। मित्रों,
क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ से जाने के बाद दोहरी बातों को लेकर चलना पड़ेगा। हमारे भीतर कमजोरियों के जखीरे भरे पड़े हैं।
हमको यहाँ से जाते ही कसम खानी पड़ेगी कि हम अपने विरुद्ध मोर्चा खड़ा करेंगे। हम अपने विचारों के विरुद्ध, अपने गुणों के विरुद्ध, अपने कर्म के विरुद्ध और अपने स्वभाव के विरुद्ध मोर्चा खड़ा करेंगे और उनसे लड़ाई लड़ेंगे, अपने आप से लड़ाई लड़ेंगे और एक भले आदमी की जिंदगी, शरीफ आदमी की जिंदगी जिएंगे।
हमारे भीतर जो कमजोरियां हैं उन्हें पैरों तले रौंदकर बाहर फेंक देंगे। आपका एक यह भीतरी मोर्चा है जिस पर आपको चलना है और बाहर का मोर्चा।
हाँ बेटे, मैं बाहर का भी बताता हूँ।
आपके घर के भीतर जो दुष्ट परंपराएं चलती हैं, मैं उसके लिए भी आपको सलाह देता हूँ। आप उसके लिए भी लोहा लेने की कोशिश करना। डॉक्टर दोनों काम को लेकर चलता है। डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ता है, मरहम लगाना पड़ता है। आप डॉक्टर की तरीके से चलें, घरवालों को प्यार करें, दुलार करें, सहयोग करें, घरवालों की सेवा करें, लेकिन जहां कहीं भी घर वाले वह काम कर रहे हों जो उन्हें नहीं करना चाहिए, तो उनके विरुद्ध खड़े हों।
न केवल घरवालों के विरुद्ध वरन सारे समाज के विरुद्ध लोहा लें। सारे समाज में जो अच्छाइयां हैं उनको समर्थन करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन जहां कहीं भी हमको गलतियां दिखाई पड़ती हैं, कुरीतियां दिखाई पड़ती हैं, अवांछनीयता दिखाई पड़ती हैं, उनसे हमको लोहा लेना चाहिए। ब्रह्मक्षेत्र। प्राचीन काल में ब्रह्मक्षेत्र नाम की एक कौम थी, फिर उसके दो हिस्से हो गए। पहले वह एक कौम थी जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय का सम्मिश्रण था। जैसे परशुराम ब्राह्मण भी थे और क्षत्रिय भी थे, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय थे। विश्वामित्र कौन थे? ब्रह्मर्षि और राजर्षि दोनों का मिला हुआ जोड़ा था।
बेटे, प्राचीन काल में ब्राह्मणों को ही दोनों काम करने पड़ते थे। ऋषियों को ही दोनों काम करने पड़ते थे। उन्हें अवांछनीयता को उखाड़ना भी पड़ता था और धर्म की स्थापना भी करनी पड़ती थी।
हवन कराना, गायत्री का जप कराना, अनुष्ठान कराना, ये सभी कार्य आप जरूर कराना।
अखंड कीर्तन कराना, सत्यनारायण की कथा भी कहना, जो भी कर सकते हो करना, लेकिन यह ध्यान रखना कि इस अकेले से काम नहीं चलेगा।
लोगों के अंदर वह वृत्ति भी जगानी पड़ेगी, वह शौर्य भी जगाना पड़ेगा, वह साहस भी जगाना पड़ेगा, वह हिम्मत भी जगानी पड़ेगी, वह रोष, वह मन्यु भी जगाना पड़ेगा, जिसके बिना इस दुनिया का संतुलन कायम नहीं रह सकता। दोहरी रणनीति। मित्रों,
आप लोगों को पहला हिस्सा, पहला काम यह बताया कि आप बंटवारे के लिए तैयार हों और अपनी जिंदगी में बंटवारा करें। यहाँ से जाते ही आप अपने क्रियाकलापों में दोनों तरह की चीजों को शामिल रखें, ज्ञान वाली चीज को, धर्म की स्थापना वाली चीज को, पूजा पाठ वाली चीज को, और साथ में संघर्ष वाली चीज को, जिसमें अपने भीतर संघर्ष करना और अपने गुण, कर्म, स्वभाव एवं आदतों को ठीक करना शामिल है। अपने आप में संघर्ष करना पहला चरण है। इसके बाद हमारा बहिरंग जीवन आता है। आपको बहिरंग जीवन में भी संघर्ष खड़ा करना पड़ेगा। संघर्ष के लिए मैं आपको शुभकामना देता हूँ और आशीर्वाद भेजता हूँ और चाहता हूँ कि आप लड़ाकू की तरीके से, गुरु गोविंद सिंह जी की तरीके से और दूसरे समर्थ लोगों की तरीके से समाज में ही किस तरह का उदाहरण पेश करें, पैदा करें, जिससे यह मालूम पड़ता हो कि इन्होंने नीति और धर्म की स्थापना में भी मदद की और अनीति तथा पाप के उन्मूलन में भी उतनी ही बहादुरी से और उतने ही साहस से काम लिया।
नंगा होना पड़ेगा। मित्रों,
दोनों काम के लिए मैं आपको यहाँ से भेजता हूँ और एक काम और सौंप करके आज की बात खत्म करता हूँ। वह काम यह है कि जब आप यहाँ से लोगों के सामने इस रूप में जाएंगे कि हम आपको कोई शिक्षण देने आए हैं, तब हर कोई आपको ज्यादा बारीकी से देखेगा और बहुत पैनी नज़र से देखेगा।
आपकी शक्ल को भी देखेगा, चेहरे को भी देखेगा, माला तो पहनाएगा पर आपको जरूर बारीकी से देखेगा।
हम यहाँ स्टेज पर बैठे हुए हैं, आप में से हर एक की नज़र हमारे ऊपर है, आप सब हमारी तरफ देख रहे हैं। इसका क्या मतलब है?
क्या 500 आदमी हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं? गुरुजी को कैसे बोलना आता है?
उनकी नाक कैसी है? उनके बाल कैसे हैं? हर आदमी की आंख हमारे ऊपर लगी हुई है। तो बेटे, आप जनता के सामने इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जैसे कि कंपटीशन में इंटरव्यू होता है।
हर आदमी आपको देखेगा। क्या चीज देखेगा?
आपकी आवाज।
हाँ बेटे, आवाज भी देखेगा।
आपकी हर चीज देखेगा, आपको नंगा करके देखेगा। कैसे नंगा करके?
जैसे मिलिट्री में भर्ती किए जाते हैं, पहले तो लंबाई ऊंचाई देखते हैं,
फिर कमरे में ले जाते हैं। क्यों साहब, यहाँ किस लिए लाए हैं?
अब आपको नंगा करेंगे।
इससे क्या मतलब है आपका? अब हम आपके शरीर का वह हिस्सा देखेंगे जो आपको नहीं दिखाई पड़ते हैं।
पहले हम उसे देखेंगे, तब फिर आपको मिलिट्री में भर्ती करेंगे। बेटे, जनता आपको नंगा करके देखेगी।
जनता में अगर आप नंगा होने के लिए तैयार नहीं है, तो आप विश्वास रखिए, आपकी इज्जत नहीं हो सकती और आपके अंदर प्रभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। हमको प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, नंगा होने के लिए तैयार होना चाहिए।
नियत परखी जाएगी। मित्रों,
क्या करना पड़ेगा? कई चीजें ऐसी हैं जो आपके ईमान से ताल्लुक रखती हैं, वह शायद उनकी समझ में न आवे।
मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ कि आपको अपना दृष्टिकोण कैसे बनाना चाहिए।
आपको मालूम है न कि रिटन टेस्ट के अलावा वाइवा भी होता है। इंटरव्यू में बातचीत से भी पूछा जाता है और मौखिक बात भी होती है। इसमें लोग आपकी बाहर की बातों की भी देख घटाव भाल करेंगे और इससे आपका वजन, आपकी इज्जत के बारे में पता लगाएंगे।
गुरुजी,
और क्या क्या बातें जांचेंगे परखेंगे?
बेटे, सबसे पहले तो वे आपका व्यक्तित्व देखेंगे,
सब बातों में आपका इम्तिहान लेंगे और हर बात में से आपके नंबर काट लेंगे।
जब लोग आपको वानप्रस्थों को खाना खिलाएंगे और यह जानेंगे कि शांतिकुंज के वानप्रस्थी आए हैं, तो जो घर में रोटी खाते होंगे उसकी अपेक्षा आपको अच्छी रोटी खिलाएंगे।
अपने घर में अगर वह मक्के की रोटी खाता होगा तो आपको गेहूं की खिलाएगा, आपको पराठा खिलाएगा।
तो महाराज जी, पराठा खाऊं कि न खाऊं?
खाना तो सही बेटे, पर क्या करेगा, तेरी इज्जत और तेरा इंटरव्यू उसके ऊपर टिका हुआ है। मैंने तुझे यहाँ सिखाया था कि जिह्वा का हमें संयमी होना चाहिए और जिह्वा पर हमें कंट्रोल करना चाहिए।
वह आदमी जिसने मिठाई ला करके परोस दी है, वह यह देखेगा कि इसका तरीका क्या है,
इसकी नीयत क्या है, इसका ढंग क्या है।
वह आपका इम्तहान लेगा। हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ। मित्रों,
क्या करना चाहिए? खानपान के संबंध में कभी आपको मौका आए तो आप प्रशंसा तो करना, परंतु किसकी करेंगे? आप उसकी भावना की, खिलाते समय उसका जो प्रेम है उसकी प्रशंसा करना, लेकिन पदार्थों की प्रशंसा मत करना। आपने पदार्थों की प्रशंसा करना शुरू किया कि आपकी मिठाई बहुत अच्छी है, पूरी बहुत अच्छी बनी हुई है और जलेबी बहुत अच्छी बनी हुई है, तो आपकी इज्जत दो कौड़ी की हो जाएगी और आपको जो संयमी व्यक्ति मानना चाहिए वह नहीं माना जाएगा।
बेटे, इज्जत खराब हो जाएगी।
आप जीभ पर काबू रखना। आप हमारे प्रतिनिधि होकर के जा रहे हैं। आप जहां चीजें परोसी जा रही हों, वहां इस बात को देखना कि आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है जायके के ऊपर कि आपको यह चीज पसंद है या अमुक चीज पसंद है। आपको तो नहीं बता सकते, पर देवकन्याओं को लड़कियों को हमने पढ़ा दिया था कि बेटे तुझे कुछ खाना हो तो यहाँ खा लेना, पर वहां जा करके शान से रहना जैसे तुम यहाँ रहती हो।
वहां कोई मिठाई वगैरह परोसता हो तो उसके सम्मान के लिए, स्वागत के लिए जरा सी चीज ले लेना, लेकिन यह मत करना की सारी मिठाइयां तुम ही खाती रहो और तुम्हें उल्टी होने लगे।
बेटे, जब तुम्हें उल्टियां होने लगेंगी, तुम बीमार पड़ जाओगी, तब हमारी बेइज्जती हो जाएगी।
बाराती बनकर मत जाना। मित्रों, देवकन्याएं यहां से जीप पर काबू ले करके गई थी।
आप भी जीप पर काबू ले करके जाना, क्योंकि आपका जनता के सामने इंटरव्यू होने वाला है। आप जनता के सामने अपनी बातचीत पर लगाम रख करके जाना। आपस में आप जब दो आदमी बात करते हों तो आप दो आदमियों के अतिरिक्त तीसरा आदमी भी आपकी बातचीत को सुनता रहता है कि ये वानप्रस्थी आपस में क्या बात कर रहे हैं। स्टेज पर तो हम बढ़िया बढ़िया बात कहेंगे और आपस में कैसी कैसी अनर्गल बातें कर रहे हैं। बेटे, आपस की बात ही आपके असली स्वरूप का बखान करती है। आपस की बात ही असली होगी जिसके द्वारा लोग आपकी इज्जत को देखेंगे, परखेंगे कि आपस में ये लोग क्या बातें करते हैं।
आपके रहन सहन का ढंग भी देखेंगे।
बेटे, हम आपको बाराती बनाकर नहीं भेज रहे हैं।
कहाँ?
लोगों के पास। लोगों के पास आप जाना तो बाराती बनकर मत जाना। बाराती किसे कहते हैं? बाराती उसे कहते हैं जो फरमाइशें करते जाते हैं।
साहब, कोका कोला लाइए, 6 बजे चाय लाइए।
हमको माला नहीं पहनाए, हमको यह नहीं दिया आदि विभिन्न तरह की फरमाइशें करते जाते हैं। वॉलंटियर बनकर सभी काम।
मित्रों,
हम आपको वॉलंटियर बना करके भेज रहे हैं। इसलिए भेज रहे हैं कि जहां कहीं भी आप जाएं, वहां कंधे से कंधा मिलाकर काम करना। एक वॉलंटियर की तरीके से उनको बताना कि आपको काम करना नहीं आता है, देखिए हमको आता है, हम यहां काम करेंगे। शाम को हमें स्टेज पर 2 घंटे व्याख्यान देना है, बाकी 22 घंटे बचते हैं। इसमें क्या हम बैठे रहेंगे? नहीं, हम आपके साथ एक स्वयंसेवक की तरीके से काम करेंगे। बेटे, आप ऐसा ही करना, इससे ही आपकी इज्जत है। नहीं साहब, हम मेहनत करेंगे तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। हम तो बड़े आदमी हैं, हम तो नेता हैं और हम तो व्याख्यान देने आए हैं।
नहीं बेटे, अगर आप व्याख्यान देने जाएंगे, नेता बनने के लिए जाएंगे, तो अपनी इज्जत गंवा बैठेंगे।
अगर वॉलंटियर की तरीके से जाएंगे और साथ साथ में आप काम करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, तो अपनी इज्जत खरीद करके लाएंगे।
आप अपनी नियमितता के संबंध में, पूजा और भजन के संबंध में, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, जिसे हमने लोगों को सिखाया है, उसके प्रति हमारी बड़ी निष्ठा है, इस संबंध में अपनी नियमितता को बनाए रखना। बेटे, मैं जो भजन सिखाता हूँ वह हमारी जीवात्मा का साबुन है, वह हमारे जीवन का ध्रुव तारा है,
वह हमारा प्राण है। हम रोटी खाए बिना जिंदा रह सकते हैं, लेकिन भजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि जिस तरह से हमारे लिए श्वास की जरूरत है, उसी तरह से भगवान के प्रकाश की जरूरत है। श्वास और भगवान का प्रकाश हमारी दृष्टि से दोनों ही बराबर है, लेकिन आपकी दृष्टि में अलग अलग हैं, जिससे मुझे नाराजगी है। नागा नहीं।
मित्रों,
आप जहां कहीं भी बाहर जाएं, अपनी नियमितता के बारे में इन बातों को ध्यान रखना कि कहीं किसी चीज में नागा न हो जाए। आज तो थके हुए हैं, लाओ आज सो जाते हैं।
नहीं बेटे, संध्या का समय है तो पहले संध्या करना।
इस संबंध में देखिए, रामचंद्र जी जब सीता जी को तलाश करने गए तो उन्होंने वियोग में बिलकते हुए देखा कि संध्याकाल हो गया है। सीता कहीं भी होंगी, किसी भी हैसियत में होंगी, लेकिन भजन करने के लिए और संध्या करने के लिए इस नदी के तट पर जरूर आएंगी। बेटे, आप भी संध्या के बारे में नागा मत करना, गैर हाजिरी मत करना, भजन के बारे में कहीं नागा मत करना। जवान से आप मिठास बरसाना, अमृत बरसाना, लोगों की प्रशंसा करना। कहीं ऐसा ना हो कि आप में जो आदत जिंदगी भर रही है और वही आदत वहां भी प्रकट होने लगे, तो बेटे हमारी भी इज्जत भी खराब हो जाएगी और आपकी भी इज्जत खराब हो जाएगी। बाहर जहां कहीं जाएं, तो आपका पहला काम है लोगों की प्रशंसा करना।
साहब, आपने बड़ी मशक्कत से यज्ञ किया,
अच्छे ढंग से पंडाल बनाया, आपने कैसी तैयारी की जिसमें महीनों लग गया।
जहां कमियां दिखाई दें वहां कहिए कि भाई साहब,
इसकी जगह पर अगर हम यह काम कर लें, अगर ऐसा संभव हो जाए तो कैसा अच्छा रहेगा। बताइए आपकी क्या राय है।
हाँ आप कहते हैं तो ठीक है, पर यहाँ कुछ इंतजाम नहीं हो सका।
देखिए कोशिश करते हैं, शायद इंतजाम हो जाए।
प्रशंसा की सृजनात्मक शक्ति। मित्रों,
अगर आप इस तरह से कहेंगे और उसके अह को प्रेस्टीज को चोट पहुंचाए बिना काम करेंगे तो इससे उसको इज्जत मिलेगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप नुक्ताचीनी करेंगे, उस आदमी की गलतियों को बताएंगे, तब आप अपना घटियापन साबित करेंगे। लोगों को तब बताएंगे कि आप बड़े घटिया आदमी हैं। आपको प्यार करना नहीं आता, आपको मोहब्बत नहीं आती, आपको दुलार करना नहीं आता, आपको प्रोत्साहन देना नहीं आता और आपकी जबान में बिच्छू का डंक है।
आप बिच्छू का डंक ले करके वहां मत जाना।
हमने ऐसा कोई वानप्रस्थी नहीं बनाया है और न कोई ऐसा नेता हम बनाना चाहते हैं जो बिच्छू का डंक जीभ में ले करके जाए। आप वहां विनम्र हो करके जाना, सज्जन हो करके जाना और सही हो करके जाना। दो बातों को और ध्यान रखना। इसमें चूक मत करना। इसमें अगर आपने चूक कर डाली तो बेटे हम मर जाएंगे। सवाल ईमान का है।
मित्रों,
पैसे के संबंध में आप यह छाप डालकर आना कि आप पैसे के बारे में निष्प्रिय हैं। कहीं आपने ऐसा करना शुरू कर दिया कि आरती उतरी और लोगों ने पैसा देना शुरू किया और बहुत सारा पैसा जमा हुआ। आपने उसमें से एक मुट्ठी जेब में डाल लिया तो बेटे हर आदमी की आंखें देख लेंगी और आपकी इज्जत चली जाएगी।
हमारी भी इज्जत चली जाएगी, भगवान की इज्जत चली जाएगी, हिंदू धर्म और संस्कृति की परंपरा की इज्जत चली जाएगी, गायत्री माता की इज्जत चली जाएगी।
इसलिए पैसे के बारे में क्या करना चाहिए? आप अपने घर में दुकानदारी करते हैं या नहीं करते हैं, बेईमानी करते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन जहां आपको हजारों आदमी देख रहे हैं और भगवान देख रहा है और जहां पर आप ऋषि की वेदी पर बैठे हुए हैं, वहां पैसे की चालाकी मत करना। पैसे की चालाकी करेंगे तो बेटे आपकी मिट्टी पलीद हो जाएगी। यहां पैसे का सवाल नहीं है, वरन ईमान का सवाल है। सवाल इस बात का है कि आपका तौल और आपका वजन इस लायक है या नहीं है। आप दो पैसे के ऊपर अपना ईमान खराब करते हैं तो हम कैसे मानेंगे कि आप ऐसे चरित्रवान आदमी हैं जो नया युग लाने के लिए लोगों के सामने अपना नमूना पेश कर सकते हैं। इसलिए पैसे के बारे में आप कुछ मत करना। जहां कहीं से भी एक एक पैसा आए, आप उसकी रसीद काट कर देना। वहां आपके पास रसीद ना हो तो हाथ से पर्ची काट कर दे देना और कहना कि देखिए हम शांतिकुंज हरिद्वार जा रहे हैं, वहां से हम आपसे 11 रुपये मिलने की रसीद काट कर भेज देंगे। तब तक आपकी जानकारी के लिए हम अपने हाथ की लिखी पर्ची देकर जाते हैं ताकि हम बेईमानी न कर सकें।
बेटे, कोई आपको रेलवे का टिकट देता है तो आप उसकी भी रसीद दे देना।
इस आकर्षण से बचना।
मित्रों,
अगर पैसे के बारे में आप अपना खरापन कायम रख सके तो हमारी इज्जत कायम रहेगी,
हमारे मिशन की इज्जत कायम रहेगी।
लेकिन अगर लोगों ने आपके बारे में यह ख्याल बनाना शुरू कर दिया कि पैसे के मामले में यह आदमी बड़ा ढीला है, बड़ा चालाक है, तो बेटे फिर आपका श्लोक बोलना बेकार है, मंत्र बोलना बेकार है। आपका अमुक काम करना सब एक और पैसे की चालाकी एक और। दूसरी एक और बात बताता हूँ कि आप जहाँ जाएंगे वहाँ आपके प्रति आकर्षण पैदा होगा। आपको मिलने के लिए सभी लोग आएंगे। लेकिन एक बात का आप विशेष ध्यान रखना, अगर आप मर्द हैं तो आप स्त्रियों के बारे में होशियार रहना। कोई भाई बहन भी रिक्शे में बैठकर अगर हंसते हुए साथ साथ जाते हैं तो हर आदमी यह कहता है कि यह प्रेमी प्रेमिका जा रहे हैं। देखने वाला हर आदमी कहता है कि किसी सयानी लड़की को बार बार बुलाते हैं और बार बार आवाज देते हैं कि तुम यह काम कर लेना, तो भाई साहब वही लड़की क्यों कर लेगी? इतने आदमी बैठे हुए हैं, उनसे आप क्यों नहीं कहते?
शील और मर्यादा बनी रहे।
गुरुजी, आप तो लड़कियों को बुरा मानते हैं और उनको दूर करना चाहते हैं।
बेटे, मैं दूर नहीं करना चाहता।
लड़कियों को आगे बढ़ाने वाला मुझसे ज्यादा कौन हो सकता है? कौन है जो मुझसे ज्यादा प्रोत्साहन करेगा? लेकिन आप आंखें नीचे रखिए, आंख से आंख मिलाकर लड़कियों की तरफ मत देखिए। जहां तक हो सके शरीर से काफी दूर रहिए।
जहां तक हो सके आप यह कोशिश कीजिए कि लड़कियों से बातचीत करनी पड़े तो कई लड़कियां हों या कई लड़के हों, तब बात कीजिए।
अकेले में बात मत कीजिए।
अकेले में जब आप बात कर रहे होंगे तब चाहे आप कोई भी बात कर रहे हों, खाने की बात कर रहे हों कि हमको बैंगन की शाख अच्छा नहीं लगता, हमारे लिए टमाटर की चटनी बना देना, आप कह यही रहे होंगे। लेकिन हर आदमी यही समझेगा कि ये लोग कोई गलत बात कर रहे हैं, खराब बात कर रहे हैं। लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में प्राचीन परंपरा यही थी कि साधु किसी स्त्री से अपना शरीर छुला नहीं सकता।
गुजरात में स्वामी नारायण संप्रदाय है।
उन लोगों की यही मर्यादा नियम है कि कोई साधु किसी स्त्री से अपना शरीर स्पर्श नहीं करा सकता। मैं उतना ज्यादा अतिवादी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूँ कि आपकी आंखों में शील और मर्यादा स्त्रियों के बारे में होनी ही चाहिए।
नारियों,
आप भी तपस्वी के रूप में जाना।
मित्रों,
महिलाओं से भी मैं यही कहता हूँ कि लड़कियों, तुम अगर कहीं शाखाओं में प्रचार करने जा रही हो, कहीं भी प्रचार करने जा रही हो, तो लड़कियों हमारी इज्जत का ध्यान रखना। तुम क्या कहती हो, क्या बकती हो, क्या व्याख्यान देती हो, उसकी कीमत 2 कौड़ी की है।
सबसे बड़ी कीमत यह है कि ये शांतिकुंज की लड़कियां हैं।
इनमें तमीज है कि नहीं है, शौर्य है कि नहीं है,
मुंह फाड़ फाड़ करके ही करेंगी और गलत तरीके से उल्टे सीधे कपड़े पहनकर बैठेंगी।
ऐसा किया तो बेटे हम मर जाएंगे। आप अच्छे तरीके से जाना। आपने देखा नहीं है कि जहां हम लड़कियों को भेजते हैं, उनको रुद्राक्ष की माला पहनाकर भेजते हैं और पीले कपड़े पहनाकर भेजते हैं। हम उनको तपस्वी के रूप में भेजते हैं। इसलिए महिला जागृति की लड़कियां जहां कहीं जाना, आप सब तपस्वी के रूप में जाना। अपने घर में जो चाहे सो पहनना, लेकिन स्टेज के ऊपर, किसी मंच के ऊपर, किसी सार्वजनिक सभा में कभी भी इस तरह का लिबास पहनकर मत जाना जो हमारी शान के खिलाफ है। अगर तुम हमारी शान के खिलाफ जाओगी, इस तरीके से बातचीत करोगी, लोगों से घुल घटाव मिलकर बातें करोगी,
भैया जी करती रहोगी, तो बेटे बात बिगड़ जाएगी।
अतः सीधे ढंग से, अनुशासित तरीके से रहना।
ईसाई नन, बेटे एक बार क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर में हमारा व्याख्यान हुआ। पादरियों ने फिलॉसफी के ऊपर वहां पर हमारा व्याख्यान कराया।
वहां हमने ईसाइयों की ननों को देखा।
वे सबसे आगे बैठी थी। बड़ी बड़ी सयानी लड़कियां थी, पर प्रत्येक लड़की को मैंने देखा जो आगे की लाइन में बैठी हुई थी, उन सब की आंखें नीची थी।
मैंने उनसे पूछा कि यह क्या बात है, आपके यहाँ तो कोई घूंघट नहीं मारता, फिर यह क्या बात है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ घूंघट तो नहीं मारा जाता, पर हमारी आंखें नीची रहती हैं। मर्दों के बारे में ये जो नने हैं, घूंघट नहीं करती, लेकिन इस बात का ध्यान रखती हैं कि कहीं इस ढंग से तो बात नहीं कर रहे हैं जिसको देखने वाला आदमी कोई गलत अंदाज लगा सके।
उनको हमेशा यह शिक्षा दी जाती है और यह बताया जाता है कि आपको आंखें नीची रखनी पड़ेगी।
मर्दों से बात करना है तो आप इस तरीके से मुंह जरा टेढ़ा करके करेंगी, कोई जरूरी बात होगी तो इस ढंग से करेंगी जिसमें कोई आदमी गलत अंदाज न लगा ले।
सार्वजनिक क्षेत्र की मर्यादाएं, मित्रों
आपसे भी कहता हूँ, लड़कियों आपसे भी कहता हूँ और लड़कों आपसे भी कहता हूँ,
चूंकि आपको सार्वजनिक क्षेत्र में भेजता हूँ और खासतौर से धार्मिक क्षेत्र में भेजता हूँ और वानप्रस्थ बनाकर भेजता हूँ, आप उपरोक्त बातों से बेहद सावधान रहिए।
स्त्रियों के बारे में आपको किसी ने कलंक लगा दिया तो बेटे हमारा मरना हो जाएगा, और अगर आपके बारे में किसी ने पैसे के संबंध में कलंक लगा दिया तो हमारा मरना हो जाएगा। फिर हम यह मिशन बंद कर देंगे, फिर हम खोमचा लगा लेंगे, रिक्शा चला लेंगे और हम यह मिशन बंद कर देंगे। अगर आप हमारी इज्जत खराब करेंगे तब
आप हमारी इज्जत मत खराब कीजिए।
हमने ऋषि का बाना पहना है, साधु का बाना पहना है, हमने ब्राह्मण का बाना पहना है और हमने यह घोषणा की है कि हम धर्मतंत्र से लोक शिक्षण करेंगे, धर्म की शालीनता की, धर्म के गौरव की हम रक्षा करेंगे।
इसलिए आवश्यक है कि आप इन मोटी मोटी मर्यादाओं को समझें।
स्त्रियों के संबंध में, पैसे के संबंध में, आपको जहां कहीं भी जाना है इन मर्यादाओं का ध्यान रखना।
चरित्र व क्रिया द्वारा शिक्षण,
अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो बेटे आपका पीला कपड़ा जो हमने पहनाया है उसकी भी इज्जत रह जाएगी और आप जो वानप्रस्थ के माध्यम से कार्य करने वाले हैं उसमें भी सफलता मिलती चली जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को पूरी तरह से ध्यान में रखेंगे और यहाँ से जाने के बाद में ऐसे कदम बढ़ाएंगे कि आपके अपने वैयक्तिक जीवन में और सामाजिक जीवन में इससे वह उद्देश्य पूरा होना संभव हो जाएगा जिसको आप व्याख्यानों के द्वारा करना चाहते हैं।
लेकिन व्याख्यानों के द्वारा नहीं, वरन अपने चरित्र और क्रियाकलाप के द्वारा अगर आप करेंगे तो हमें खुशी होगी और हमारे उद्देश्य की पूर्ति हुए बिना नहीं रहेगी।
नया युग आ रहा है और नए युग के संदेशवाहकों को कैसा व्यक्तित्व वाला होना चाहिए, इसके संबंध में आप तैयारी कीजिए और ऐसे ढलने की कोशिश कीजिए ताकि आपके व्यक्तित्व की प्रत्येक नस और प्रत्येक रोम रोम उपदेश देता चले और लोग अनायास ही आपकी तरफ खींचते चले आए,
अनायास ही मिशन की तरफ खींचते और जुड़ते चले जाए। अगर आप इतना कर सके तो आपका वानप्रस्थ जीवन धन्य हो जाएगा और हमारा उद्देश्य मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण पूर्ण होने में देर नहीं लगेगी। आज की बात समाप्त। ओम शांति।